नमस्कार भारत, तारीख 15 जुलाई दिन बुधवार, मैं हूं वंदना। ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते पर अमेरिका में राजनीतिक मतभेद, लेकिन भारत के लिए क्या है मायने?
बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ईरान में एक बहुत बड़ा भंडार है गैस का और तेल का हिंदुस्तान को, जिसकी बहुत जरूरत है। तेल के कुएं भी खरीदना चाहता है, गैस भी वहाँ से खरीदना चाहता है।
अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार के बीच बढ़ रही हैं सियासी नजदीकियाँ।
दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्थन, दोनों के एक दूसरे के हिस्सों के साथ टिका हुआ। नीतीश कुमार हार जाते हैं तो उससे केजरीवाल भी कमजोर हो जाएंगे दिल्ली में।
जानेंगे कि दो टीमों पर लगे प्रतिबंध के बाद अब क्या होगा आईपीएल का नया स्वरूप। होंगी और भी खबरें, पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, समीर आत्मज मिश्र से। पश्चिमी देशों के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुए समझौते का उसके मध्य पूर्व के पड़ोसी देशों ने स्वागत किया है। सऊदी अरब का कहना है कि वह ईरान के साथ अच्छे रिश्तों की उम्मीद करता है, हालांकि उसने चेतावनी दी है कि ईरानी नेताओं को अपने संसाधनों का निश्चित तौर पर लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं समझौते के शुरू से ही विरोधी रहे इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक गलती करार दिया है। इस बीच लंबे समय बाद ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के खात्मे के बाद ईरान में लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने कहा है कि राहत पैकेज की कीमत पर यूरोजोन की कड़ी शर्तों की वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं। उनका कहना था कि वो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से बचाने के लिए ऐसा करने पर विवश हुए हैं। ग्रीस में एक टेलीविजन चैनल से उन्होंने सांसदों से इसके पक्ष में मतदान करने की अपील की। ग्रीस की संसद में इस विषय पर आज चर्चा होगी और उसके बाद मतदान होगा। संसद के कई सदस्य कड़ी शर्तों का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरह से यूरोजोन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी राहत पैकेज की कड़ी शर्तों की आलोचना की है और कहा है कि यूरोजोन ने इन शर्तों को ग्रीस के ऊपर थोपा है। क्रिकेट में सट्टेबाजी की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति ने चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक गुरुनाथ मैयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा को दोषी पाया है। दोनों पर क्रिकेट संबंधी गतिविधियों में भाग लेने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। दोनों इंडियन प्रीमियर लीग में दोनों की टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अभी अभी नासा का प्लूटो मिशन कामयाब रहा है, ये खबर मिली है। अंतरिक्षयान ने नासा के वैज्ञानिकों के साथ संपर्क साध लिया है। पहली बार कोई यान प्लूटो ग्रह के पास से गुजरा है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक इसको लेकर काफ़ी आशंकित भी थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फिजिक्स की प्रोफेसर लीसा रेंडाल का कहना था कि इस अंतरिक्षयान से बहुत सी उम्मीदें पाली गई थीं।
It's an incredibly exciting development because we're really looking out further in the solar system than we've really looked.
ये बेहद रोमांचक क्षण है। हमने सौर मंडल को इतने करीब से पहले कभी नहीं जाना था। एक भौतिक विज्ञानी होने के नाते ये वैसा तो नहीं है जैसा कि हमने उम्मीद कर रखी थी, लेकिन फिर भी सोलर सिस्टम के बारे में मैं अब पहले से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी हूँ। इससे लोग भी सौर परिवार के बारे में और जानकारी ले सकेंगे। ये थी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फिजिक्स की प्रोफेसर लीसा रेंडाल। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में वंदना का अभिनंदन स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम में आज शुरुआत करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते से। करीब 13 साल की लंबी खींचतान, आरोप प्रत्यारोप और वार्ताओं के कई दौर के बाद कल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता हो गया। समझौता होने के बाद लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ईरान में अब भी लोग सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं, तो अमेरिका के भीतर इसे लेकर एक राय नहीं है। न्यूयॉर्क से सुनिए सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने वाले समझौते का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वागत हो रहा है। रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका ने तो समझौते के लिए ईरान के साथ सीधी बातचीत में भाग लिया था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी परमाणु समझौते पर खुशी जताते हुए अब ईरान के साथ व्यापार बढ़ाने की भी बात कही। सर्गे लैवरॉफ कह रहे थे, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तो ईरान के साथ हमारी बहुत व्यापक स्तर पर योजना मौजूद है। ईरान में कई परमाणु प्लांट लगाने का समझौता भी हो चुका है, लेकिन ये समझौते तो पहले ही हो चुके थे और अब इस नए परमाणु समझौते के हिसाब से ही इसमें आगे काम किया जाएगा। इस परमाणु समझौते के तहत ईरान को तेल और गैस के कारोबार, वित्तीय लेन देन, उड्डयन और जहाजरानी के क्षेत्रों में लागू प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। ईरान की अरबों डॉलर की सील संपत्ति को भी जारी किया जाएगा। उधर इसराइल ने समझौते को ऐतिहासिक गलती बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है, लेकिन वियना में मौजूद जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक स्टाइनमायर ने इस सिलसिले में उम्मीद जताई है कि इसराइल को बिलाखिर मना लिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि ये समझौता ईरान और पश्चिमी देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने में पहला कदम हो सकता है। जवाद जरीफ का कहना था कि आइसिस या दाएश के खतरे से निपटने के लिए अधिक सहयोग की जरूरत है।
This is not a threat that can be contained to Syria or Iraq. This is a threat that would not even recognize regional borders.
जवाद जरीफ कह रहे थे, ये खतरा सिर्फ सीरिया और इराक तक ही रोका नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि ईरान का जो हवा बनाया गया था अब वो खत्म हो रहा है, जिससे हम असली मुद्दों से निपट सकें। उधर अमेरिका में इस परमाणु समझौते को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन इस समझौते पर बटे हुए हैं, जहां एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिकतर सांसद ईरान के साथ परमाणु करार के हक में हैं, वहीं विपक्ष की रिपब्लिकन पार्टी के अधिकतर सांसद इस समझौते का जमकर विरोध कर रहे हैं। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर जॉन बेनर ने इस समझौते को नामंजूर करते हुए कहा,
The deal that we have out there, in my view, is unacceptable.
ये समझौता मेरे हिसाब से तो अमान्य है। इससे एक खतरनाक हुकूमत को आर्थिक प्रतिबंध हटाने से करोड़ों डॉलर मिल जाएंगे और साथ में ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाने का भी रास्ता साफ हो जाएगा। ये थे जॉन बेनर के शब्द। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी के लिए मुख्य प्रत्याशी हिलरी क्लिंटन ने ईरान के साथ समझौते का समर्थन किया है।
This is an important step in putting the lid on Iran's nuclear program.
हिलरी क्लिंटन कह रही थी कि ये समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने के लिए एक अहम कदम है। अब अमेरिकी कांग्रेस में समझौते पर अगले 2 महीने तक गौर किया जाएगा और इस पर बहस भी होगी, फिर इस पर मतदान किया जाएगा। चूंकि अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, इसलिए उम्मीद यही की जा रही है कि अमेरिकी कांग्रेस में समझौते को नामंजूर कर दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो कांग्रेस द्वारा इस समझौते को लागू करने में किसी भी रुकावट को वीटो कर देंगे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
तो अमेरिका में राजनीतिक असहमति है ईरान के साथ हुए समझौते को लेकर। वहीं राष्ट्रपति ओबामा ने सऊदी अरब के शाह सलमान को फ़ोन भी किया है और इस समझौते पर बातचीत की है। वैसे माना जा रहा है कि समझौते के बाद ईरान और कई अन्य देशों के बीच कारोबारी संभावनाओं के दरवाजे खुल जाएंगे। भारत पर इस समझौते का क्या असर होगा, परमाणु समझौता हुआ है, इसके बारे में हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने बात की मध्य पूर्व मामलों के जानकार कमर आगा से।
मैं समझता हूँ बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उसकी 2 वजहें, एक तो ईरान बहुत करीब है हिंदुस्तान से, पहले इसके बॉर्डर भी, आज़ादी से पहले तो बॉर्डर भी मिलते थे हमारे ईरान से। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि ईरान में एक बहुत बड़ा भंडार है गैस का और तेल का हिंदुस्तान को, जिसकी बहुत ज़रूरत है। मगरबी एशिया यानी वेस्ट एशिया के हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से अराजकता फैल रही है उसका कोई भरोसा नहीं है। हिंदुस्तान चाहता है डाइवर्सिफाई करना अपना तेल के सोर्सेस को और एनर्जी के सोर्सेस को, दोनों को वो चाहता है। तो ईरान और सेंट्रल एशिया ये 2 बड़ी जगहें हैं जहां से हिंदुस्तान तेल हासिल कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हिंदुस्तान की जो नई नीति है वो ये है कि इन कंट्रीज़ में वो तेल के सेक्टर में इन्वेस्ट भी करना चाहता है, तेल के कुएं भी ख़रीदना चाहता है, गैस भी वहां से ख़रीदना चाहता है। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट न केवल सरकारी कंपनीज़ बल्कि प्राइवेट कंपनीज़, रिलायंस जैसी कंपनीज़ हैं।
जी वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस करार से जो चाबहार पोत परियोजना है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ये परियोजना ऐसे में भारत के लिए कितनी अहम हो जाती है?
देखिए, ईरान जो है ये गेटवे है सेंट्रल एशिया का, जाने का रास्ता है। सेंट्रल एशिया लैंडलॉक्ड रीजन है और यही एक तरीका है हिंदुस्तान के जाने का है। चाबहार पोर्ट जो है इससे हमारा सारा ट्रेड न केवल ईरान को होगा बल्कि वो रशिया और सेंट्रल एशिया और रशिया और ईस्टर्न यूरोप तक वहाँ पे जाएगा। चाबहार पोर्ट के بنانے میں ہندوستان کا بہت بڑا رول ہے، ہندوستان ہی اس کو بنا رہا ہے. چابہار پورٹ کو انڈیا نے افغانستان سے بھی کنیکٹ کر دیا ہے. چابہار پورٹ سے کنیکٹیویٹی ہوگی، ریل، روڈ اور پائپ لائن کی کنیکٹیویٹی ہوگی جو سینٹرل ایشیا تک جائے گی اور پھر ادھر رشا اور دوسرے ملکوں میں. ہمارا ٹریڈ ایران کے ساتھ دوسرے سیکٹرس میں بھی بڑھے گا، جیسے فارماسیوٹیکل ہے، پھر اس کے بعد آئی ٹی انڈسٹری ہے، ایجوکیشن سیکٹر ہیں، بڑے بڑے کنٹریکٹس ہیں وہاں کے جو بھارت کو ملنا کی امید ہے. ایران چاہتا بھی ہے کہ اس کے کام کرے.
تو یہ تھے مدھ پور معاملوں کے جانکار قمر آغا، جو بتا رہے تھے کہ ایران سے جو پرمانو سمجھوتا ہوا ہے وہ بھارت کے لیے کیوں اہم ہے. اب بات بھارت کے چھتیس گڑھ راجیہ کی. چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں سندگدھ ماؤوادیوں دوارا اغوا کیے گئے پولیس کے چار جوانوں کا اب تک پتہ نہیں چل پایا ہے. اس بیچ پولیس نے اپنے دو اور جوانوں کے لاپتہ ہونے کی بات کہی ہے. رپورٹوں کے مطابق آج ماؤوادی ایک جن عدالت بھی لگانے والے ہیں. رائے پور سے آلوک پتل کی رپورٹ.
شکروار کو ماؤوادیوں نے دورنا پال اور پولم پلی کے بیچ ونجی پاس سے پولیس کے ایک سہایک آرکشک ماڑوی سوما اور ایک گرامین کا اپہرن کیا تھا. رویوار کو گرامین کو تو ماؤوادیوں نے رہا کر دیا، لیکن ماڑوی سوما کا ابھی تک پتا نہیں ہے. اسی طرح سوموار کی شام کٹرو علاقے سے ماؤوادیوں نے ضلع پولیس بل کے چار جوانوں کا اپہرن کیا تھا، ان کا بھی کہیں اتا پتا نہیں ہے. اپنے استر پر گرامینوں کا دل جنگل میں ماؤوادیوں سے سمپرک کرنے کی کوشش میں جٹا ہوا ہے. اب بیجاپور پولیس نے کہا ہے کہ ان کے دو اور جوان لاپتہ ہیں. راجیہ میں نکسل آپریشن کے آئی جی دیپانشو کابرا کا کہنا ہے کہ پولیس اپہرت جوانوں کی رہائی کے لیے آپریشن چلا رہی ہے. راجیہ کے مکھیہ منتری رمن سنگھ کا کہنا ہے کہ جوانوں کی رہائی کے لیے سرکار کچھ مدھیستوں کے ساتھ سمپرک میں ہے.
بیجاپور میں اور بیجاپور کے آس پاس کے جو ہمارے ادھیکاری ہیں وہ سمپرک میں ہیں، اور کچھ میڈیا کے بندھو بھی ہیں جو اس معاملے میں سہیوگ کر رہے ہیں، ان کے بھی سمپرک ہیں اور کوئی الگ الگ چھیتروں میں. تو کل ملا کر یہ سمپرک کیا جاتا ہے کہ ان کو سرکشت کس پرکار واپس لایا جائے، اس پرکار کی رنڈیتی وہاں پہ ضلع استر میں بنائی.
لیکن لاکھ ٹکے کا سوال تو یہی ہے کہ کیا اکیلے بستر میں 50,000 سے ادھک پولیس اور اردھ سینک بلوں کے جوانوں کی تعیناتی کے بعد بھی ماؤوادی مضبوط بنے ہوئے ہیں؟ یہی سوال پوچھا ہم نے دنتے واڑا سے پرکاشت بستر امپیکٹ اخبار کے سمپادک سریش مہاپاتر سے.
بستر میں جس طرح سے جوانوں کے اپہرن کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس سے اسپشٹ ہے کہ ماؤوادی ابھی بھی طاقتور ہیں. اصل میں بستر میں پولیس اور نکسلوں کے بیچ نئی قسم کی لڑائی چل رہی ہے. جوانوں کے لیے پولیس مدھیستوں کے بھروسے ہوگی مجھے امید کم ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ گرامین بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بستر میں جنتا کی سامان پرکریا ہے، وہ یدھ میں دونوں پکشوں سے پیڑت ہو کر بھی ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے.
اس بیچ خبر آ رہی ہے کہ ماؤوادی بدھوار یعنی آج اپنی ایک جن عدالت لگانے والے ہیں جہاں پولیس کے اپہرت جوانوں کو پیش کیا جائے گا. آلوک پتل، رائے پور، چھتیس گڑھ.
تو لگاتار لاپتہ ہو رہے ہیں پولیس کے جوان چھتیس گڑھ میں. اب بات کرتے ہیں بھارت میں راجنیتک ہلچل کی. دلی کے مکھیہ منتری اروند کیجریوال اور بہار کے مکھیہ منتری نیتیش کمار کے بیچ پچھلے کچھ سمے سے الگ ہی جگل بندی چل رہی ہے. نیتیش کمار نے دلی کو پورن راجیہ کا درجہ دیے جانے کا سمرتھن کیا ہے. جنتا دل یونائیٹڈ کے نیتا نیتیش کمار کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ انیہ پارٹیوں کے ساتھ مل کر اس مدے کو مانسون ستر میں بھی اٹھائیں گے. پچھلے کچھ مہینوں میں کیجریوال اور نیتیش کمار چار بار مل چکے ہیں. ہماری سہیوگی سوشیلا سنگھ نے ورشٹھ پترکار شورن گرگ سے پوچھا کہ نیتیش کمار کا عام آدمی پارٹی سے نزدیکی بڑھانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے.
دونوں ہی نریندر مودی کے نیتت کا اور نریندر مودی کے کی ستا کا جم کر اور کھل کر ویروت کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ اگر نریندر مودی کی ستا کا ویروت نہیں کیا گیا تو دیش میں وپکش کی راجنیتی نہیں ہو پائے گی. دونوں کا ایک دوسرے کے پرتی سمرتھن دونوں کے ایک دوسرے کے ہتوں کے ساتھ ٹکا ہوا ہے. اگر بہار میں نیتیش کمار ہار جاتے ہیں تو اس سے کیجریوال بھی کمزور ہو جائیں گے دلی میں، اور اگر نیتیش کمار جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد کیجریوال کا دلی میں جو بولنا ہے یا کام کرنا ہے اس کے معنی تھوڑے بدل جائیں گے.
کیجریوال کا یہ کہنا ہے کہ آگامی چناؤ جو ودھان سبھا چناؤ بہار میں ہونے والے ہیں وہ اس میں عام آدمی پارٹی کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کریں گے.
عام آدمی کی پارٹی کی وہاں کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہے. عام آدمی پارٹی کے لوگوں نے वो जो इकाई है आम आदमी पार्टी की बिहार इकाई, उसके कुछ लोगों ने वहाँ थोड़ी हलचल शुरू की। इस समय केजरीवाल और नीतीश की जो जरूरत ये है कि विपक्ष के वोटों का विभाजन नहीं हो। आम आदमी पार्टी का वहाँ ऑफिशियली तो कोई चुनाव लड़ने का कोई कारण नहीं बनता है।
बिहार में जो गठबंधन है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का, उस गठबंधन को केजरीवाल कितना समर्थन दे पाएंगे?
एक तो मुद्दा इसमें ये है कि क्या केजरीवाल ऐसे किसी गठबंधन और महागठबंधन के साथ अपने भाग्य को जोड़ना चाहेंगे क्या, जिसमें लालू यादव भी हैं, क्योंकि लालू यादव जिस तरह से केजरीवाल का अतीत में विरोध करते रहे जब इनका आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। दूसरा ये कि लालू यादव इस तरह के किसी चीज को स्वीकार करेंगे क्या कि केजरीवाल का वो खुले तौर पर समर्थन पसंद करें या बिहार में उनका स्वागत करें, या बिहार केजरीवाल जाएं या आम आदमी पार्टी के नेता जाएं तो उनके साथ मंच में भागीदारी करें। ये काफी अभी खुला सवाल है।
तो केजरीवाल और नीतीश कुमार की नज़दीकियों के मायने समझा रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग और उनसे बात कर रही थी सुशीला सिंह। अब बात जब बिहार की हो ही रही है तो राजनीति से परे बिहार के एक और दिलचस्प पहलू पर नज़र डालते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम ही वो चीज़ है जो आपके जीवन के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनका नाम ही उन्हें समाज में हंसी का कारण बना देता है। पटना से सुनिए सीटू तिवारी की ये विशेष रिपोर्ट।
फिल्म पीके में जगत जननी साहनी ने तो अपना नाम बदलकर जग्गू रख लिया, लेकिन भारत की लाखों महिलाएं अपने अटपटे नाम के साथ जीवन गुजर बसर कर रही हैं। नेपाल के चिकनी गांव की 60 साल की फिकनी देवी उनमें से एक हैं। फिकनी देवी जब पैदा हुई तो उन्हें कोई बीमारी थी, माँ बाप ने उन्हें घर से बाहर फेंक दिया और नाम पड़ गया फिकनी देवी। अपने नाम के बारे में फिकनी देवी कहती है कि जिंदा रहने के लिए आदमी क्या नहीं करता, हम जिंदा रह जाएं इसलिए माँ ने फेकनी नाम रख दिया।
माई नाम धैलक हमार फेकनी देवी, ना जियत रहे ओकरा बाल बच्चा है तब फेकनी देवी नाम धा देला, तो हमरा का कहली जे बिग देला रही गुथार पर तब जिंदा हो गयी तब लोग फेकनी देवी फेकनी देवी का करे, और सब लोग हंसत रहे तो वही लगा से अब आदमी का करे, जीवन अपन बचाव के चलते आदमी का ना करता का करे।
फिकनी जैसी टीस चिंता देवी, राजस्थानी समंदर कुंवर, कलपाती, फुलझड़ी देवी, पनौती देवी, प्रेमनी जैसी तमाम औरतों को है। पटना शहर से सटे सिपारा की फुलझड़ी देवी तो नाम की पीड़ा से इस कदर गुजरी कि जब वो शहर आकर बसी तो सबसे पहले अपने बच्चों के नाम बदले। पहले गांव में उनके बच्चों के नाम धुरिया कनरिया यानी गंदगी के उपनाम थे, जिसे उन्होंने बदलकर शिववचन और संतोष रखा। फुलझड़ी और उनकी पोती खुशबू बताती हैं,
अब हम क्या कर सके, हम कुछ कर सके अब तो ना, अब जवान हो रहते हैं कि अब दूसरा नाम धर सके है, अब तो हुआ पक्का नाम अथी में चल गया, तो हम तो ना कुछ कर सके अब घर में बना तो दूसरा नाम है।
अजीब तो बहुत लगता है, लगता जैसे कि कोई अगर किसी को बोलते भी है तो मजाक में उड़ा देता है कि ये कोई नाम है, ऐसा नाम नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम पहले के आदमी लोग ऐसा ही नाम रखते थे क्योंकि अधिकतर हम लोग गाँव में देखते हैं अधिकतर के नाम है।
ऐसे दिलचस्प नाम और उनसे जुड़ी ऐसी ही बातें आपको जगह जगह मिल जाएंगी। हालांकि नाम बदल रहे हैं और अब ऐसे अटपटे नामों की पीढ़ी भी खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। नामों में हो रहा ये बदलाव सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक है। दलित चिंतक और साहित्यकार प्रेम कुमार मणि इसे बड़ा बदलाव मानते हैं। पुराने नामों की वजह वो मनुस्मृति में ढूंढते हैं। प्रेम कुमार मणि कहते हैं,
पहले जैसा कि मनु ने बतलाया था पहले कि वह शूद्रों का अपमान सूचक नाम होना चाहिए, ब्राह्मणों का मंगल सूचक नाम होना चाहिए, धन सूचक नाम वैश्यों का होना चाहिए, वीरता सूचक क्षत्रियों का होना चाहिए। तो जो काम करने वाले जो लोग थे या जो निचले तबके के लोग थे जिसे हम सबाल्टर्न कहते हैं, तो वो उन लोगों के नाम तो निश्चित रूप से खराब होते थे, मंगर, बुधिया, भीसु, माधव, ये सब जो हमारे साहित्य में भी नाम आते थे। अब वहाँ भी नाम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, अब वो फिल्मों से नाम ग्रहण करते हैं।
हालांकि प्रख्यात समाजशास्त्री हेतुकर झा इसे कोई मूल बदलाव का संकेत नहीं मानते।
गांव का जो कम्युनिटी टूटता गया, वो सेकुलर सीट था, उसके बंधन थे और उसके सर्टेन नॉर्म्स थे। उस नॉर्म्स के तहत लोग सारे रिचुअल्स करते थे, सारी बातें करते थे। तो जब वो टूट गया तो ये टूट गया, उसी के अंतर्गत नेमिंग की प्रक्रिया होती थी। अब उसको आप कह सकते हैं कि कम्युनिटी के जो स्ट्रेंथ था उसका ये डिसएडवांटेज था। द प्रॉब्लम इज दैट द चेंजिंग इन द पैटर्न ऑफ नेमिंग रिफ्लेक्ट्स द टेंडेंसी, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द टेंडेंसी ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द विलेज कम्युनिटी।
दिलचस्प है कि सिर्फ नाम ही नहीं बदल रहे बल्कि जाति सूचक शब्दों में भी बदलाव आ रहा है। हाशिए पर पड़ी जातियां अब अपने ही समाज के बड़े जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। साफ है नाम और जाति सूचक शब्दों में ये बदलाव कहीं न कहीं पहचान और उसकी राजनीति से जुड़ा है। सीटू तिवारी, पटना।
नामों के ये हेर फेर वाली रिपोर्ट आपको कैसी लगी जो सीटू तिवारी ने भेजी थी, हमें जरूर लिख भेजिएगा। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। आईपीएल में सट्टेबाजी के आरोपों की जांच रिपोर्ट आने के बाद से क्रिकेट जगत में हड़कंप सा मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की सब बनाई समिति ने चेन्नई सुपर किंग्स के गुरुनाथ मायप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक राज कुंद्रा को दोषी पाया है, तो चेन्नई और राजस्थान की टीमों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। इस फैसले का क्या व्यापक असर होगा, इस पर हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने बात की वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली से।
एक क्लियर मैसेज दिया है कि करप्शन टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और पहले की तरह नहीं है कि आप कोई गुनाह कीजिए और छोटी सी सजा आपको मिले और बच जाएं। लेकिन दो बड़ी टीमें जो दो फॉर्मर चैंपियंस रही हैं आईपीएल की, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए सस्पेंड किया है। लोढ़ा कमेटी ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है, बीसीसीआई को एक स्ट्रांग मैसेज दिया है कि आप थोड़ा सख्त हो जाएं।
अब उन टीमों के खिलाड़ियों का क्या होगा जैसे राजस्थान रॉयल्स के हैं या फिर चेन्नई सुपर किंग्स के, और क्या बीसीसीआई के लिए ये आसान होगा कि वो अगले साल के लिए 2 टीमों का और गठन करे, या फिर अगर 6 टीमों के साथ आईपीएल होता है तो क्या ब्रॉडकास्टर्स इसके लिए तैयार होंगे? आपको लग रहा है बीसीसीआई के लिए आने वाला समय इतना आसान नहीं है?
हाँ, बहुत चुनौती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं बीसीसीआई के लिए। जैसे आपने कहा कि प्लेयरों का आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, उनको रिलीज करेंगे तो किस टीम में जाएंगे, फ्रेश ऑप्शन होगा, और जो आपने बात की 6 टीम, ब्रॉडकास्टर तो चाहेगा और जितने मैचेस हों, क्योंकि एडवर्टाइजर्स चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट को दिखाया जाए। क्रिकेट जितनी देखी जाएगी उतनी ही पॉपुलर मानी जाती है, लेकिन 6 टीमें भी अगर खेलती हैं तो मैचेस बहुत जुझारू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आईपीएल लेस पॉपुलर हो जाएगा, पर इतना आसान डिसीजन नहीं है, क्योंकि 2 टीमें ऐड करनी है अगर आपको तो 2 टीमें नहीं चुननी पड़ेंगी। कोची का मामला फंसा हुआ है अभी भी, एक और कंपनी है जो चाहती है कि अपना टीम फ्लोट करें। मुझे भरोसा है कि कोई नया फ्रेंचाइजी तो मिल जाएगा, लेकिन कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ये तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। 6 टीम की आईपीएल करके इनको देखना चाहिए, क्योंकि मैचेस में कॉम्पिटिशन बहुत होगा, फालतू मैचेस नहीं होंगे, जिसमें ऐसे ही मैचेस में करप्शन आता है। जब आप कोई ऐसा मैच खेलते हैं जिसका मायने नहीं है अगर रैंकिंग पे या टूर्नामेंट की पॉइंट्स टैली में, तो उन मैचेस में करप्शन बढ़ता है। पर इस डिसीजन के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा प्लेयर्स भी सोचेंगे जो करते रहे हैं, अगर करना चाहते हैं इस टाइप के करप्ट एक्ट, वो भी 2 बार सोचेंगे। लेकिन फ्रेंचाइजीज के लिए तो क्लियर मैसेज है कि आप क्लीन क्रिकेट को प्रमोट कीजिए।
तो ये थे खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली, जो मानते हैं कि फिलहाल आईपीएल को 6 टीमों के साथ ही चलाकर देखना चाहिए। तो ये तो था आईपीएल से जुड़ा विवाद, और खेल जगत में और क्या हो रहा है सुनते हैं आदेश कुमार गुप्त से ही।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को हरारे में खेले गए 3रे और आखिरी एक दिवसीय मुकाबले में 83 रन से करारी मात दी। इसके साथ ही भारत ने सीरीज को एक तरफा रूप से 3-0 से अपने नाम किया। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 277 रनों का विशाल लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी टीम 42.4 ओवर में ही 193 रनों पर सिमट गई। जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज चामू चिभाबा ने जरूर 82 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज कोई विशेष योगदान नहीं दे सके। भारत के स्टुअर्ट बिन्नी ने 55 रन रन देकर 3, मोहित शर्मा ने 33 रन देकर 2 और हरभजन सिंह ने भी 35 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 276 रन बनाए। केदार जाधव ने अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जीवन का पहला शतक जमाते हुए नाबाद 105 रन बनाए। उनके अलावा मनीष पांडे ने भी 71 रनों का योगदान दिया। आखिरकार इस सीरीज से भारत को क्या मिला, इसे लेकर भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया कहते हैं।
अपनी जगह बनाने के लिए विजय बहुत लंबे समय के बाद वापसी हो रही है, रहने उनको एक रिस्पांसिबिलिटी मिली और उन्हें भी पता है कि जब दोबारा टीम आएगी तो शायद उसमें वो ओपन करते हुए नजर ना आए, तो शायद उस सीट को पक्का करना चाहते थे, क्योंकि वनडे क्रिकेट के अंदर ओपनर के पास सबसे ज्यादा मौका होता है रन बनाने का आजकल जिस तरह की क्रिकेट है। फिर रॉबिन उथप्पा की अगर हम बात करें तो उनकी उनके लिए एक अहम दौरा था, 30 के आसपास रन तो बनाए लेकिन उस तरीके की पारी नहीं जिसकी उम्मीद कर रहे थे। मनोज तिवारी ने सबको निराश किया, जिस तरीके की दबाव में रायडू ने शतक बनाया था, फिर केदार यादव ने शतक बनाया या पांडे ने जिस तरीके की पारी खेली है, गेंदबाज हरभजन सिंह को विकेटें मिली हैं। अगर आप किसी टीम को हरा रहे हैं जिस टीम शून्य से आपने हराया है तो वो निरंतरता देखने को फास्ट बॉलिंग में भी नहीं मिली।
उधर टेनिस के कोर्ट पर भारत के चोटी के खिलाड़ी सोमदेव वर्मन ने अमेरिका के डेनियल नगुएन को 7-5, 4-6, 7-6 से हराकर एटीपी नीलसन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया।
तो खेल की खबरें भी हो गई और अब नजर दौड़ा लेते हैं आज के अखबारों पर, और काफी फैलाकर समीर ने पूरे मेज पे अखबार सजा दिए हैं। क्या कहते हैं आज की हेडलाइंस
वंदना जी? आज के अखबारों में आईपीएल की खबर पूरी छाई हुई है और दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग हेडलाइंस दी है अखबारों ने और बड़ी दिलचस्प हेडलाइंस दी हैं।
ये बहुत बड़ी खबर है।
बड़ी खबर है हाँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी अखबार हैं लगभग सबकी लीड खबर मुझे यही दिख रही है, अगर कोई और छूट जाए तो मैं नहीं कह सकता। और हेडलाइंस की मैं बात कर रहा था, अगर आपको कुछ एक उदाहरण दूँ, जैसे दैनिक भास्कर लिखता है कि सट्टे के गुरु का राज खत्म, और
राज से शायद उनका आशा राज कुंद्रा से।
और चेन्नई राजस्थान क्लीन बोल्ड, ये हेडलाइन है हिंदुस्तान की, और नवभारत टाइम्स की भी बिल्कुल यही हेडलाइन है, चेन्नई राजस्थान क्लीन बोल्ड। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है 2 आईपीएल एक्स चैंप्स किक्ड आउट इन बिगेस्ट क्लीनअप।
जी, दोनों टीमें पूर्व चैंपियन रह चुकी हैं।
दोनों टीमें पूर्व चैंपियन रह गई हैं। अमर उजाला ने भी इसी को लगभग सभी अखबारों में, क्रिकेट में गुरुराज खत्म, ये लिखता है दैनिक जागरण। और दैनिक भास्कर ने इन दोनों के बारे में कुछ दिलचस्प आंकड़े भी दिए हैं। और पहले तो ये बता दूं कि जो जस्टिस लोढ़ा ने, जिन्होंने ये फैसला दिया है और जिन्होंने ये जांच की थी, उन्होंने पत्रकारों ने कई सवाल पूछे, उन्होंने बहुत से जवाब भी दिए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने कान ही बंद कर लिए। वही तस्वीर लगाई है दैनिक भास्कर ने और नीचे लिखा भी है कि फैसले के बाद पत्रकारों के सवालों के शोर पर जस्टिस लोढ़ा ने कान बंद कर लिए। दैनिक भास्कर लिखता है कि राज कुंद्रा के बारे में लिखा है कि पिता कभी बस कंडक्टर थे, बेटा आज 2500 करोड़ रुपए का कारोबारी है। गुरुनाथ मैयप्पन के बारे में लिखा है कि बचपन में स्कूल से निकाले गए, आज 9 करोड़ के याट के मालिक हैं। तो लगभग सभी अखबारों में ये खबर प्रमुखता से। इसके अलावा जो ईरान और पश्चिमी देशों के साथ जो परमाणु समझौता हुआ है वो खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता से छाई हुई है। और द हिंदू की एक खबर का मैं जिक्र करना चाहूँगा, द क्वालिटी ऑफ एयर यू ब्रीद इन चेन्नई इज वर्स देन इन दिल्ली।
यानी चेन्नई में ये बोल रहे हैं
प्रदूषण ज्यादा है,
जबकि दिल्ली में कहा जा रहा था,
हाँ कहा जाता है कि दिल्ली में ज्यादा है, लेकिन जो हवा हम लोग जिस सांस लेते हैं वो चेन्नई में उसकी स्थिति खराब है। स्टेगर ऑफिस आवर्स टू कट पॉल्यूशन, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अगर आपको प्रदूषण को
काबू में
करना है तो ऑफिस के जो समय है उसमें बदलाव, आने जाने का समय है उसमें बदलाव करिए। और एक खबर तीस्ता सीतलवाड़, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके दफ्तरों और घर पर छापे पड़े हैं, उस खबर की चर्चा है। और मुलायम की इफ्तार में अमर सिंह पहुंचे, अमर उजाला ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से जगह दी है।
जी जी जी, बीच में काफ़ी दूरियां भी दोनों
रही हैं दोनों में। जी हाँ
जी, तो समीर बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों पर नज़र डालने के लिए, कई तरह की खबरें रही। और अब कार्यक्रम खत्म करने से पहले नज़र डाल लेते हैं मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। पश्चिमी देशों के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुए समझौते का उसके मध्य पूर्व के पड़ोसी देशों ने स्वागत किया है, जबकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक गलती करार दिया है। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने कहा है कि राहत पैकेज की कीमत पर यूरोजोन की कड़ी शर्तों की वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं। उनका कहना था कि वो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से बचाने के लिए ऐसा करने पर विवश हुए हैं। ग्रीस में आज इस विषय पर, ग्रीस की संसद में इस पर आज मतदान होना है। सट्टेबाजी की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति ने चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक गुरनाथ मैयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा को दोषी पाया है। बीबीसी समाचार।
जी तो इसके साथ ही नमस्कार भारत में विदा लेने का समय आ चुका है। आज स्टूडियो संभाला था देवाशीष ने। अब मुलाकात होगी ठीक एक घंटे बाद।